आज ये 99 नंबर का श्लोक है। प्रारब्ध के ऊपर विचार चल रहा है वेदांत की दृष्टि से। दो दृष्टियां होती हैं, एक व्यवहार की दृष्टि है, एक वेदांत की दृष्टि है। वेदांत क्या चीज है ये आप लोगों के सामने कभी हमने इस बात का उल्लेख किया होगा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जब मांडुक्य का भाष्य लिखा तो मांडुक्य के भाष्य में उन्होंने एक बात लिखी, वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम। मांडुक्य जो है वो वेदांत का सार है और गीता जो है वो वेद का सार है। वेदार्थ सार संग्रह लिखा ना, तो गीता सबके लिए सहारा है। कर्म वाले के लिए भी सहारा है, कर्म वाले के लिए मैंने पापी के लिए भी सहारा है। जिसका पापी मैंने मल की निवृत्ति के, मल मैंने पाप, जिसका चित्त बहुत चंचल है उसके लिए भी सहारा है। लेकिन मांडुक्य उसके लिए सहारा नहीं जिसके चित्त में पाप हैं और जित का चित्त चंचल है। पाप की निवृत्ति और चित्त की चंचलता ये जब आप दूर करके आएंगे तब आप मांडुक्य की क्लास में बैठो, नहीं तो तुम्हारे हालात भी ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई बच्चा है और कोई बड़ा सुंदर प्रोफेसर है, पांचवी क्लास में पढ़ता है और बीए एमए को पढ़ाने वाला प्रोफेसर है, उसकी क्लास में बच्चे को बिठा दो। प्रोफेसर ने लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया लेकिन बच्चा कुछ समझा नहीं, क्योंकि वो बच्चे के लिए सहारा नहीं है। वो किसके लिए सहारा है? मांडुक्य उसी के लिए सहारा है जिसके पाप निवृत्त हो गए हैं और चित्त की चंचलता समाप्त हो गई। ऐसे व्यक्ति के लिए मांडुक्य बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन जित का चित्त चंचल है और अंतःकरण में पाप है ऐसे व्यक्ति को मांडुक्य सहारा नहीं देता। वो सहारा उसी के लिए बनेगा जिसके अंदर ये दो चीजें आएंगी, उसको कंधे पे बैठा करके ले जाएगा। लेकिन जिसके अंदर ये दो दोष हैं, मांडुक्य कहते हैं जरा दूर रहो, अभी इतने करीब आने की जरूरत नहीं है। चलो अब बता रहे हैं, उच्यते अज्ञेहि बलात् बलात् चैतद् चैतद् अनर्थ द्वयागमः। दो अनर्थों का आगमन हो जाएगा। बोले क्यों, किसके द्वारा? उच्यते अज्ञेहि, यदि कोई अज्ञानी जन जबरदस्ती प्रारब्ध को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। अज्ञानी जन का अर्थ क्या हुआ भाई? अब समझना थोड़ा बात को, बड़ा बड़ा गहरा श्लोक है ये। अरे जैसे कोई सपने में किसी चीज को सिद्ध करने की कोशिश करेगा, अब वो जो सिद्ध करने वाला है वो भी झूठा है
और जिसको सिद्ध करेगा वो सच्चा कैसे होगा? जो सिद्ध सच्चा कौन है? सच्चा वो है जो जगने के बाद बताएगा ऐसा ऐसा हो रहा था। ये ध्यान रखना, सच्चा वो है जो जगने के बाद ये सब कहानी तुमको सुनाएगा। अब सवाल ये है कि वो जो सपने की कहानी सुना रहा है आपको, वो सोया हुआ था कि जगा हुआ था? वो जगा हुआ था कि सोया हुआ था? अरे चुगलखोर कौन होता है? अब यहां की बात तुम घर पे करोगे तो यहां सोए रहोगे तब बोलोगे महात्मा ने क्या बोला, कि जगे रहोगे तब बोलोगे? अरे तभी ना बोलेंगे भाई। ऐसे ही सपने की पूरी डिटेल्स आप बताते हो, मैंने ये देखा और मैंने वो देखा, फलाना मेरे को मिला, फलाने ने ऐसे रंग के कपड़े पहने थे, इतनी बारीकी से आप सारी डिटेल्स बताते हो वहां के, तो आप वहां जगे हुए हो कि सोए हुए हो? तो कोई चीज आपके अंदर ऐसी है जो कभी सोती नहीं है, उसमें सोने का अध्यारोप है, वो इंद्रियों के साथ में मिल जाती है तो सोने का अध्यारोप उसमें हो जाता है। भाष्यकार बड़ी ऊंची बात कहते हैं, उच्यते अज्ञेयी बलात्, बलात् माने जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या करते हैं वो? एतद् एतद्, एतद् का मतलब हो गया प्रारब्ध, प्रारब्ध को सिद्ध करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? अनर्थ द्वयम्, दो प्रकार के अनर्थ हो जाएंगे। क्या दो प्रकार के अनर्थ होंगे? वेदांत हानम, एक तो वेदांत की हानि हो जाएगी। तो वेदांत की हानि क्या चीज है भाई? वेदांत माने मोक्ष, तब मोक्ष कभी होगा ही नहीं। हाँ, ये प्रारब्ध और आरब्ध जितना है ये सब अज्ञान अवस्था में ही है। शरीर के साथ में तादात्म्य यदि है तो समझ लो अज्ञान पक्का है, पक्का है। जो अज्ञान मैंने क्या हुआ? अरे भाई सीधी सीधी बात है, आप लोग इतने ज्ञानी हो, अज्ञान का मतलब ये हुआ जो आप नहीं हैं वो अपने को समझ रहे हैं। तो जो आप शरीर आप नहीं हैं, एक आपने कभी भागवत सुना है? भागवत सुना होगा शायद। भागवत में सबसे विचित्र मौत यदि किसी व्यक्ति की हुई है, वो किसकी विचित्र मौत हुई है देख, कभी सोचा आपने? पढ़ा होगा किसकी मौत लगती है आपको सबसे बड़ी विचित्र? किसकी लगती है, हैं? अभी मैंने, आप ऋषभ देव की मौत देखना, कैसी मौत हुई ऋषभ देव की? पढ़ा भागवत पढ़ा होगा, आज पढ़ना जाकर के। जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है और वो व्यक्ति उस आग से बचने की कोशिश नहीं करता, मुंह से आवाज न निकले इसलिए मुंह में पत्थर रख देता है। पढ़ो थोड़ा सा, जाके देखो कभी। इतना विवेक शरीर से, इतना विवेक आपको हो जाए तब तो आपकी कुछ समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। जनक ने, जनक को उसने, यष्टावक्र ने यही कहा, आपको ज्ञान हो गया अब संसार का कोई प्रयोजन नहीं, अब छोड़ो इसको। अष्टावक्र तो गुरु थे ना, और वो गुरु उस शिष्य जब तक गुरु के समान न बने तब तक गुरु को भी संतोष नहीं होता। उसने कहा छोड़ो क्या, जब तुमको ज्ञान हो गया पता लग गया सब झूठा है। उसने कहा गुरुजी बड़ी मुसीबत ये हो गई, अभी मैं छोड़ूं तो क्या छोड़ूं, अब तुम सपने में तुम्हें महल मिला, अब उस सपने के महल को तुम छोड़ने की एक योजना बनाओ तो बना सकता है क्या? सपने के महल को छोड़ने की योजना आप तभी बना सकते हो यदि कहीं ना कहीं आप सपने को सच्चा समझे, झूठे छोड़े नहीं जाते कभी। सच्चा सांप होगा डंडे से आप बोलते हो मैंने भगा दिया, और रस्सी के सांप को बोलोगे मैंने भगा दिया, उसने अष्टावक्र से कहा महाराज आप बात कर रहे हो तो छोड़ूं तो क्या छोड़ूं, छोड़ने के लिए भी पहले उसको सच्चा मानना जरूरी है। आप दान देते हो कभी? दे तो देते हो लेकिन वो रसीद जेब में लेके घूमते हो, छोड़ तो दिया लेकिन दिया वो जो एक छोड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं उसको पकड़ा हुआ है। पहले पैसे का भी मान था, अभी पैसे को छोड़ने का भी मान हो गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब खाली इतना, ऐसा नहीं बोलता हूं देना दान वान करना बंद मत कर देना, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि छोड़ा तभी जा सकता है जब आप वस्तु को सत्य माने। यदि आप सत्य नहीं मानते तो छोड़ा नहीं जा सकता किसी चीज को। बस यही बोलते हैं, देखो बलाच्चैतद् अनर्थ द्वयागमः, दो प्रकार के अनर्थों का आगम हो जाएगा। एक तो वेदांत हानम, वेदांत सिद्धांत की हानि हो जाएगी। अच्छा दूसरा क्या हो गया? अच्छा वेदांत सिद्धांत क्या हो गया? मोक्ष। यही वेदांत का सिद्धांत है। मोक्ष के पहले कहीं कुछ मोक्ष के पहले कहीं संतोष नहीं, बस यमराज ने नचिकेता को संतुष्ट करने का बहुत प्रयास किया लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, अभी प्यास इतनी गहरी है कि पानी के बिना बुझ नहीं सकती और भूख इतनी गहरी है कि भोजन के बिना उसका समाधान हो नहीं सकता। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि अब ज्ञान के पहले कहीं रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यही वेदांत का सिद्धांत हो गया मोक्ष। वेदांतम हानम। अच्छा अब एक बात ये हो गई, वेदांत मोक्ष की हानि हो गई, फिर मोक्ष होता किससे? ज्ञान से। हाँ फिर ज्ञान भी नहीं होगा। ये दो ये देखो पढ़ लिया, अब अर्थ लग जाएगा आपको। अनर्थ द्वयागम, दो अनर्थों का आगम हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। एक तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा और दूसरा फिर मोक्ष को देने वाला जो ज्ञान है वो भी व्यक्ति को नहीं होगा। इसलिए प्रारब्ध जो है वो भी अज्ञान अवस्था में है, और ज्ञानी कभी यदि दुखी सुखी दिखाई देता है वो अज्ञानी की दृष्टि में सुखी दुखी दिखाई देता है, वास्तविक में वो सुखी दुखी नहीं होता, प्रारब्ध उसकी दृष्टि में नहीं है। चलो अभी 100 नंबर के श्लोक में आ जाओ, क्या बोलते हैं अभी देखो। त्रिपंचांग अन्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वै सदा कार्य निधिध्यासनमेव तु। अब आचार्य कहते हैं
त्रिपंचांग तीन का गुणा पांच में करो कितने हो गए, हाँ ये 15 अंग हैं उसको ज्ञान को प्राप्त करने के 15 अंग। वक्षे उन 15 अंगों को मैं आपको कहता हूं, किसके लिए कहता हूं, पूर्वोक्तस्य लब्धये, पूर्वोक्त मैंने मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में पहले इन 15 अंगों को धारण करना पड़ता है। और हम लोगों की मुसीबत यह है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन ये 15 अंग हमारे जीवन में आवे उसके लिए कोशिश नहीं करते। अभी आप देखो हमारे यहां जो दर्शन है उनमें जैन दर्शनों में अहिंसा का बड़ा महत्व है, जैन दर्शन में अहिंसा और अपरिग्रह का बड़ा महत्व जैन दर्शन के अंदर है, कृष्ण ने भी अपरिग्रह का महत्व बताया। लेकिन श्री कृष्ण ने एक बात पहले कही, कृष्ण ने कहा अहिंसा एक छाया है और साधना आपको इंद्रियों का संयम है, यदि आप इंद्रियों के संयम को साध लेते हैं तो आप चाहकर भी हिंसा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का अपने जीवन में इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग किया है कठोपनिषद के अंदर, प्राणचिखाने व्यतृणत, व्यतृणत माने नहीं, व्यतृणत माने हिंसक, तस्मात् प्राणचिखान सिद्धि का अर्थ होता है बहिर्मुख, व्यतृणत माने हिंसक, ये इंद्रियां हिंसक हैं। पूर्व मीमांसा में लिखा है नानुपमर्द्य भोग संपद्यते, दुनिया में कोई भी भोग दूसरे को कष्ट दिए बगैर नहीं हो सकता। तुम मुलायम मुलायम चमड़े के जूते पहनते हो, पशु को कैसा मारा जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जितना सुंदर भोग है उस भोग के पीछे उतना कष्ट है, मैंने कभी आपको बताया था, हाथ से बनाई हुई चटनी में और ग्लेंडर में पीसी हुई चटनी में अंतर है कि नहीं है, बोलो। क्यों, पसीना टपकता है, मेहनत लगती है उसमें, कोई भी भोग बिना कष्ट के संभव नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों को हिंसक बनाया, मीमांसा कहती है नानुपमर्द्य भोग संपद्यते, बिना उपमर्दन के भोग नहीं होता है। इसलिए कृष्ण ने अहिंसा पे जोर तो दिया लेकिन कृष्ण ने जोर दिया पहले इंद्रियों के संयम पे। अच्छा, मैंने कभी आपको एक छोटा सा दृष्टांत दिया होगा कि पहला वाला जो वाल्मीकि था उसकी शक्ति इंद्रियों के साथ में जुड़ी थी, तो इंद्रियों के साथ में जिस व्यक्ति की शक्ति जुड़ी होगी उस व्यक्ति की भोगों से ही तृप्ति होगी, और यदि वो शक्ति दो ही तरफ से जुड़ती है। मैंने कभी एक छोटा सा दृष्टांत देकर आपको समझाया था, आप याद नहीं रखते होंगे। अग्नि है वो लकड़ी के साथ में जुड़ती है तो जलाने वाली बन जाती है, और वो लकड़ी के साथ उसका संबंध यदि टूट जाए फिर वो वायु के साथ में मिल जाती है। वायु जहां जीवन देने वाली है वहीं अग्नि लकड़ियों के साथ में मिलकर के जीवन को लेने वाली बन जाती है। वायु अग्नि का कारण है। जब व्यक्ति कारण के साथ में जुड़ता है तो उसके अंदर दया करुणा स्वाभाविक आ जाती है। आप लोग बहुत श्रुत हैं, वाल्मीकि रामायण का उदय ही यहां से हुआ कि वाल्मीकि एक पक्षी को मारते हुए देख लेता है निषाद को और उसको श्राप दे देता है। जिस आदमी ने आदमियों को मारा हो, जिस आदमी ने आदमियों को लूटा हो, आज वो आदमी एक पक्षी को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसका कारण क्या है? पहले वो इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ था, और जब इंद्रियों के साथ में जुड़ता है तो हिंसक हो जाता है, और बाद में जब आत्मा के साथ में जुड़ा, राम के आने के पहले उसने राम की कहानी लिख दी। मूल चीज है कि आदमी जुड़ता किससे है। जब जुड़ा कार्य के साथ में तो हिंसक हो गया, जुड़ा कारण के साथ में। वेदांत का मूल चिंतन यह है कि आप अपने कारण की तरफ जाएं, और कारण की तरफ अब जब जाएंगे आप तब आपके जीवन में आपको शांति मिलेगी। चलो समझ में आई होगी बात शायद। अच्छा हां तो करते ही रहना। त्रिपंचंगानी अथो बक्षे अथ अथ मैंने अनंतर, प्रारब्ध की कहानी कहने के बाद। ये तो प्रारब्ध अष्टावक्र के लिए नहीं है, प्रारब्ध जनक के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ियां चढ़नी हैं पहले आपको उन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम आपको उन सीढ़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं वो कितनी सीढ़ियां हैं, तो त्रिपंचांग, तो तीन का गुणा पांच में कर देना। बक्षे कहता हूं, पूर्वोक्तस्य लब्धये। यहां पर शंकराचार्य बड़ी दया करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी बहुत दयनीय स्थिति हमारी है। विषयों के साथ में रहते 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 स्थिति बड़ी दयनीय है। कभी कभी आदमी बोलता है कि महाराज इतनी जल्दी जिज्ञासा नहीं होती। अरे नारायण, जिज्ञासा मैं तो समझता हूं भगवान का नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिस संसार में आप पूरे जीवन को खपा देते हो, एक घंटे का सत्संग आपकी 24 घंटे की जड़ें हिला डालता है, तो प्रभाव कोई कम थोड़ा ही है उसका, बड़ा प्रभाव है उसका, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, पूर्वोक्तस्य लब्धये मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तैश्च सर्वै सदा कार्यम्, उन सबको मनुष्य को हमेशा करना चाहिए। जो भी 15 अंगों का वर्णन करेंगे अगले श्लोक में, उनको आदमी को करना चाहिए। भर्तृहरि ने लिखा है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम, सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम। ऐसा बताया, सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये जो
संगति आपकी होती है वो आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। तैश्च सर्वई सदा कार्य निदिध्यासन मेव तू। तू शब्द करता है निश्चय, निश्चय ही व्यक्ति को थोड़े समय तक ध्यान करना चाहिए। निदिध्यासन शब्द का अर्थ हो गया ध्यान। सजातीय विजातीय प्रत्यय रहित एक विशेष चित्त का चिंतन चले चित्त के अंदर, उसी का नाम है ध्यान। चलो अब आगे थोड़ी और बढ़े थोड़ी सी। अच्छा आगे कहते हैं नित्याभ्यासात् नित्य प्राप्तिर्न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासेत जिज्ञासु श्रेयसे चिरम्। अच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा जैसे बुभुक्षा पिपासा ऐसे ही जिज्ञासा, पानी प्यास लगे पिपासा, आपकी नजरें चारों तरफ दौड़ती हैं पानी को खोजती हैं, क्योंकि प्यास का समाधान का आपको पता है पानी है, भूख की समाधान का आपको पता है कि अन्न है, लेकिन इस समस्या का आपको पता नहीं है। कबीर, कबीर का ही है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बड़ी बड़ा रास्ता बड़ा गजब का है, आदमी चलता है कहां और भटक जाता है कहां, ऐसी गली है, जगत का ऐसा आकर्षण है, कभी कभी आदमी उलझ के रह जाता है। इसलिए कह रहे हैं उपाय क्या है, शंकराचार्य भगवान बता रहे हैं नित्य अभ्यासात रिते, रिते मेरे, रिते मैंने बिना, अब नित्य अभ्यास के बिना प्राप्तिर न भवेत, प्राप्ति संभव नहीं है। अभ्यास तो आदमी को नित्य करना चाहिए, नित्य अभ्यासात् रिते प्राप्तिर न भवेत सतचित आत्मना। अभ्यास नित्य करना चाहिए। वो तुलसी ने भी लिखा है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बहुत आप अभ्यास करते हैं और बड़ी मजेदार बात यह होती है कि आनंद जो आपको मिलता है वो कहीं और से नहीं, वो अपने अंदर से ही मिलता है। हमने कभी आपको एक बारी दृष्टांत दिया था, याद है नहीं आपको, पता नहीं, बहुत पहले की बात है, जहां गुरुशरणानंद जी महाराज रहते हैं, पहले वो आश्रम वहीं नीचे रहता था, तो इनके पहले के जो महंत थे इनके गुरु भाई, तो एक महात्मा अभी भाईंदर में रहते हैं, वो और हम ऐसे घूमते घूमते चले गए वहां पे, उनका नाम था ब्रजानंद जी महाराज, बड़े अच्छे महात्मा थे, विरक्त महात्मा थे, हम लोग गए वहां, बोले अरे फक्कड़ कहां से आए, तो वो दूसरा महात्मा गुजराती था, तो बोला महाराज जी आप बात करो, हमने कहा यहां से आए, तो बोले रहो इधर, तो वहां बाहर कुटिया के बाहर दो तीन कुटियों के बाहर एक हैंडपंप लगा होता था, वहां तो लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरे नहीं होते थे उस समय, घास फूस की झोपड़ी होती थी उस समय, ये मैं आपको बता रहा हूं लगभग 74-75 की लगभग की बात है ये सब, तो घास फूस की झोपड़ी होती थी, तो सुबह सुबह महात्मा 4 बजे उठते थे और फिर पानी भर के बाहर जाते थे जंगल आदि करने के लिए,
अब सुबह सुबह जो हैंडपंप चलाओ तो पानी ही नहीं निकलता था, आप कितने ही चला लो पानी नहीं निकलता था। फिर दूसरा महात्मा कहता रहे ऐसे नहीं निकलेगा पानी, हाँ वो जो तुम्हारा कमंडल का पानी है वो पानी उसमें डालो। अब वो कमंडल में कितना पानी है, एक किलो, क्योंकि लेके ही सोना पड़ता था, डाला। अब उसमें एक किलो आपने पानी डाला, उसके बाद आप हजार किलो बाहर निकाल लो। और बड़ी मजेदार बात क्या है, वो कमंडल का पानी भी उसी का है। यदि आपने पंचदशी पढ़ी होगी, उसमें एक प्रकरण आता है विषयानंद, पंद्रह प्रकरण है, उसमें एक विषयानंद एक प्रकरण है। विषय में भी जो सुख है वो परमात्मा का ही सुख है। इतना बताया कि विषय का सुख क्षणिक है और परमात्मा का सुख शाश्वत है। लेकिन वो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए आदमी को क्षणिक सुख को त्यागने की सामर्थ्य होनी चाहिए, क्षणिक सुख को त्यागने का मनोबल होना चाहिए। वो हमारा मनोबल नहीं होता। वो मुक्तावरीकार ने लिखा है वो दृष्ट फल है, वो पानी दिखाई दे रहा है कमंडल का और वो दिखता नहीं है। अब जो नहीं दिखता है उसको देखने, जो दिख रहा है उसको छोड़ने में जरा परेशानी है। लेकिन बेटा कितनी देर तक पकड़ के रखोगे उसको, वो तो ऐसे ही सूख जाएगा, इतनी गर्मी पड़ती है। विषय के सुख तो ऐसे भी सूख जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, संसार के लिए प्रकृति ने आपको एक नियत काल दिया है, उसके बाद प्रकृति आपको रिजेक्ट कर देती है, बोलते अब तुम इस काम के लायक नहीं हो। जैसे गवर्नमेंट रिटायर करती है ना, ऐसे ही करते बस। इसलिए बता रहे हैं देखो, अच्छा तस्मात् इसलिए निदिध्यासित, आचार्य एक बोल रहे हैं, इसलिए आदमी को निदिध्यासन करना चाहिए। बोले किसको करना चाहिए, जिज्ञासु श्रेयसे, जो श्रेय का जिज्ञासु हो। देखो प्रेय का जिज्ञासु नहीं होना पड़ता, प्रेय मनुष्य के जीवन की एक आवश्यकता है और श्रेय आपके जीवन में तब उत्पन्न होता है जब प्रेय पदार्थों के प्रति आपके मन में संशय पैदा हो जाता है। एक उदाहरण के लिए मैं बात बताता हूं आपको। बीच में बिल गेट्स का इतना नाम हम लोगों ने सुना, उसने इतना दान दिया, इतना दान दिया, तो उसका बहुत नाम आप लोगों ने भी सुना पेपरों में, ये इतना दान दे दिया, इतना दान दे दिया। अच्छा पैसा कमाने से उसका इतना नाम नहीं हुआ, पैसा देने से जितना नाम हो गया। जब आदमी श्रेय की तरफ जाता है तो कहीं न कहीं उसके चित्त में इतना निश्चय होता है कि प्रेय पदार्थों से मेरी तृप्ति नहीं होती। यमराज ने लिखा, बड़ी अच्छी बात कही, श्रेय और प्रेय जो है ना वो दोनों मिल करके आते हैं। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा हुआ है, शास्त्रों में कहते ग्रंथे ग्रंथी, ग्रंथों में गांठ होती हैं और वो गुरु लोग ही वो गांठ खोलते हैं। वो श्रेय और प्रेय जो होते हैं ना वो मिलकर के आते हैं। दोनों यमराज ने कहा नचिकेता से, अरे मैं तेरे को ऐसी स्त्रियां देता हूं, ये दुर्लभा मनुष्य लोके तान बिरणी सो, ऐसी स्त्रियां किसी दुनिया में किसी व्यक्ति ने भोगी नहीं होंगी। साथ में तेरे को ये भी आशीर्वाद देता हूं कि तू भोगते भोगते बूढ़ा नहीं होगा, और जब तक तेरी इच्छा होगी तब तक तू जिएगा। अब सामान्य व्यक्ति तो इस बात में फंस जाए, लेकिन आश्चर्य की बात है भाष्यकार भगवान क्या सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिज्ञासु श्रेयसे, जो श्रेय का जिज्ञासु है। नचिकेता की यमराज ने जिज्ञासा और बढ़ा दी। जैसे तुम्हारे सामने कोई धन फेंकता चला जाए, आप तो व्यापारी हो, व्यापारी जानता है, आपने किसी को, उसने बोला मैं 2 करोड़ रुपए लूंगा, आपने 2.5 करोड़ बोला, तो वो सोचता है मैंने 3 करोड़ क्यों नहीं बोला, 3 बोलता तो शायद 3 भी दे देता। ऐसी वो ऐसे प्रलोभन फेंकता चला गया उसके सामने, लेकिन उसके दिमाग में एक बात उल्टी आ गई। नचिकेता के दिमाग में उसने कहा, ये आत्मज्ञान के बहाने और इतनी चीजें देने के लिए तैयार है तो जरूर आत्मज्ञान में कोई दम है। उसका वो उसके सामने प्रलोभन देता गया प्रेय का, और उस आदमी का आकर्षण बढ़ता चला गया श्रेय के प्रति। वहां कठोपनिषद में शब्द का प्रयोग किया है विविनक्ति धीरा, जो धीर होता है वो दोनों को अलग कर बैठता है। उसने कहा आखिरकार ये इतना जोर क्यों दे रहा है। तब उसने कहा एक वहां बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग कठोपनिषद, देवैरपि अत्र किल विचिकित्सितं पुराः। उसने कहा इस विषय में देवताओं को भी संशय है, प्रत्येक देवता को आत्मज्ञान नहीं होता। आपने ब्रह्मसूत्र तो सुन चुके हो, एक बारी पढ़ा तो नहीं होगा, सुना तो है जरूर। उसमें एक अधिकरण आता है, उस अधिकरण का नाम है देवता अधिकरण। क्या अधिकरण है? देवता अधिकरण। उसमें यह बताया कि देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं। पढ़ा कि नहीं ब्रह्म तो सुना? सुना है। तो वहां क्या निश्चय किया कि अधिकार है देवताओं का कि नहीं अधिकार है? हैं? अधिकार है, हाँ अधिकार है, लेकिन प्रवृत्ति कम देखी जाती है क्योंकि वहां बुढ़ापा नहीं है। अब यहां जितने स्वाध्याय में आते हैं 3 टांग वाले आते हैं, अथवा 4 आंख वाले आते हैं, अथवा किसी की कमर में दर्द होगा। देवताओं में न जरा है, क्योंकि धर्म की तरफ ज्यादा प्रवृत्त करता है बुढ़ापा। क्योंकि जितना इकट्ठा किया था, कोई कोई बुढ़िया तो आती है चाबी लटका के, उसकी बहू थोड़ी कमजोर होती है लेकिन उसकी दृष्टि रहती है किसके ऊपर? चाबी के ऊपर। हाँ जितना किया था तो चाहता है। तो आपकी ब्रह्म विद्या में यदि प्रवृत्ति है वो अधिकरण पढ़ने लायक है, जरूर कभी पढ़िएगा वो देवता अधिकरण, पढ़ने लायक है।
देवताओं की अधिकार होने के बावजूद भी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में दुख नहीं है, उनके जीवन में बीमारी नहीं है, उनके जीवन में मौत का भय नहीं है। अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को यही चीजें मोड़ती हैं। नचिकेता तो कोई कोई होता है, न बीमारी हो न बुढ़ापा हो, वो तो कृष्ण की दृष्टि से विचार करें तो बात समझ में आती है कि तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, कहीं उसको पिछले जन्म का संयोग प्राप्त हुआ होगा। तभी तो आए, और तुम भी देखते हो मेरे बाप की कुर्सी खाली हुई तो मैं इस पे बैठा, अब मेरा लड़का कैसे इस पे बैठेगा, भी तो खाली तो करनी पड़ेगी ना, और खाली तुम करने वाले नहीं हो, वो तो वही कराएगा, कौन, जो सबकी कराता है, यमराज मत बोलो, जो सबकी कराता है, ये नियम है उसका। इसलिए देवताधिकरण के अंदर ये विचार किया गया कि अधिकार होने के बावजूद भी ये मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि उससे जीवन के अंदर जरा भी है, व्याधि भी है, मृत्यु का भय है, और कभी कभी कोई व्यक्ति नचिकेता जैसा भी होता है, कभी कोई कोई व्यक्ति ध्रुव के जैसे भी होता है, कभी कोई भी कोई व्यक्ति प्रहलाद के जैसे भी होता है। प्रहलाद ने कहा भगवान से, बस ऐसा करो कि कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। इसलिए आचार्य कहते हैं, देख लीजिए आप, तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासेत, एक प्रकार की विधि हो गई है आचार्य के द्वारा बताई गई, जिज्ञासु श्रेयसे चिरम, जो श्रेय की कामना करने वाला है वह जिज्ञासु ऐसा करे। अच्छा, एक श्लोक और कर लेते हैं, थोड़ा सा चार मिनट बाकी हैं। यमो हि नियमस्त्यागो मौनम देशश्च कालता आसनम मूलबंधश्च देहसाध्यम च दृग स्थिति। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि एक बताया पहले यम, यम, और उसके बाद बताया नियम, यम नियम, और फिर बता दिया तीसरा त्याग, त्याग बताया, और चौथा बता दिया मौन। मौन किसको बोलते हैं मालूम है आपको? एक वेद के अंदर एक मंत्र आता है, वांग में मनसी प्रतिष्ठितम मनो में वाची प्रतिष्ठितम। पुराने जमाने में टेलीग्राम होता था, आपको मालूम हो टेलीग्राम होता, टेलीग्राम आ जाए तो हड़कंप मच जाता था, या तो कोई मर गया हो या कोई बड़ी घटना हो गई हो तो टेलीग्राम आता था, और चिट्ठी आए तो आप, चिट्ठी यदि आए, पुराने जमाने में लोग चिट्ठी का भी इंतजार करते थे, लेकिन बहुत भूख लगी हुई है आपको और आप भोजन करने के लिए बैठे और डाकिया आया चिट्ठी लाया तो आप बोलते चलो पहले भोजन कर लेते हैं बाद में चिट्ठी पढ़ लेंगे। लेकिन यदि कहीं वो आ जाए ना, क्या तार टेलीग्राम, तो आप जो है भोजन छोड़ के पहले क्या करते थे, टेलीग्राम, क्योंकि उसमें सूचना है। टेलीग्राम में और चिट्ठी में क्या अंतर है? चिट्ठी टेलीग्राम के अंदर बहुत कम शब्द होते हैं और चिट्ठी में बहुत शब्द होते हैं। वांग में मनसी प्रतिष्ठितम, तुम्हारी वाणी, मन मनसी शब्द सप्तमी का एक वचन है, तुम्हारी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, जो तुम्हारे मन में होवे वही तुम्हारी वाणी बोले। और जो तुम्हारी वाणी बोले वही तुम्हारा मन सोचे। वाणी संयमित होने लगती है। और चिट्ठी में तो फालतू की बात है, यहां वर्षा हो रही है, अब बंबई में बरसात होती है तो सौराष्ट्र में क्या करेंगे उसका, हम कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन टेलीग्राम के अंदर बिल्कुल एकदम बातें खास खास होती हैं। वाणी का संयम और फिर वो जो शब्द हैं वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मौनम, देश भी उसमें महत्वपूर्ण है, देश भी महत्वपूर्ण है, काल भी महत्वपूर्ण है। देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्यम, देह साम्य का माने जब बैठते हैं तो देह की स्थिति को ऐसा रहना चाहिए, सीधा रखनी चाहिए देह की दृष्टि। और दृक स्थिति का बोलते हैं दृष्टि की स्थिति, एक लक्ष्य के ऊपर दृष्टि की स्थिति होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं दृक स्थिति। अच्छा, आगे बता रहे हैं, प्राण संयमनम चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानम समाधिश्च प्रोक्तानि अंगानि वैक्रमात्। इतने 15 अंग जो हैं ये बताए गए, इन अंगों का व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो थोड़ी बहुत ख्याल रखते होंगे मेरे प्रवचन में आप, तो पूर्वापर का संबंध होता है। वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र में एक बात कही, जहां भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात कही कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य करनी चाहिए, तो वाचस्पति जी ने इस बात के ऊपर थोड़ा सा नीचे टिप्पणी लिखी है कि ब्रह्म जिज्ञासा करने से नहीं होती, वो व्यक्ति तंत्र नहीं है जिज्ञासा। यदि आपके अंदर विवेक वैराग्य सड़संपत्ति होगी तो आपको जिज्ञासा होगी। उन्होंने उनका वाचस्पति मिश्र का शब्द है, यस्याम भवन्ति भवत्येव। यदि आपके पास में ये 4 चीजें होंगी तो आपको जिज्ञासा होनी ही है। अब आपके सामने आंख आपकी ठीक है, चश्मा बराबर पहना है, सामने जो चीज रखी है उस चीज को दिखना ही है। अब ये फूल पीला है, अब ये फूल को दिखना है, और यदि आंख बंद है तो मैं चाहूं, कितना भी चाहूं कि फूल देखो देख सकता हूं, क्यों? आंख बंद है। इसी प्रकार से कितना भी बोलें कि तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो, तुम कर नहीं सकते जब तक तुम्हारे पास में ये साधन नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने जिज्ञासा को व्यक्ति तंत्र नहीं बताया, वस्तु तंत्र बताया। आदमी जो कर सकता है, यदि आदमी ने उसका संपादन कर लिया तो आदमी को जिज्ञासा अपने आप हो जाएगी। इसलिए आदमी को इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए, और जब आदमी इन चीजों का अभ्यास करेगा तो आदमी को ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। इस प्रकार से 103 नंबर के श्लोक हो गए।